बार सब लोग फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आज हम इस सुंदर प्रार्थना का सातवां श्लोक पढ़ रहे हैं, आठ में से सातवां श्लोक। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे भगवान, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से वर्षा के समान मूसलधार अश्रु प्रवाह हो रहा है और आपके बिना मुझे सारा जगत शून्य ही दिखाई पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है और इस कलयुग में आज से करीब 524 साल पहले एक भक्त के रूप में भगवान आए थे, उनकी भक्ति कैसे करनी है इसका उदाहरण दिखाने के लिए स्वयं भक्त बनकर आए थे। इसलिए लोगों को उनके विषय में पता नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही अपनी इच्छा से और योजना से अपने इस अवतार को गुप्त रखा था कि किसी को पता नहीं चले कि वो स्वयं कृष्ण है। लेकिन कई स्थानों पर जब ये आचार्यों ने लेखन किया तो उससे पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए थे। और एक भक्त बनकर भक्ति कैसे की जाती है उसका उन्होंने एक आदर्श रखा हमारे सामने। और कुछ स्थानों पर उन्होंने अपना दिव्यत्व यानी भगवान का जो स्थिति है उसको प्रकट किया, कई लीलाओं में उन्होंने दिखाया कि मैं एक गुप्त रूप में अपने कुछ गिने चुने भक्तों के सामने फिर ये बातें प्रकट की उन्होंने। लेकिन आम जनता के सामने कभी भी उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया कि मैं भगवान हूं। विशेष बात समझने की यह है कि उन्होंने केवल 8 श्लोक लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, लेकिन एक भक्त ने एक बार नौका में बैठे हुए जब ये चर्चा चल रही थी कि भगवान ने कहा मैंने भी कुछ शास्त्र लिखे हैं, उसने कहा मैंने भी लिखे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान अगर आपने लिखे हैं तो मेरा शास्त्र कौन पढ़ेगा, आपका शास्त्र पढ़ेगा। तो जैसे ही उस भक्त ने ये बात कही तो तुरंत ही भगवान ने अपने सारे शास्त्र नदी में फेंक दिए और कहा कि अभी देखो अभी मेरा कोई शास्त्र नहीं है, अभी तुम्हारा शास्त्र लोग पढ़ेंगे। तो भगवान ने ऐसे आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपने वैराग्य का वहां पर दर्शन कराया कि किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ किताब लिखेंगे, कुछ कविता लिखेंगे, कुछ 4 लाइन लिखेंगे तो बहुत प्रिय होती है कि ये मेरा क्रिएशन है, उसको त्यागना बहुत मुश्किल होता है या उसका नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये तुकाराम महाराज को भी कहा था कि सारी गाथाएं इंद्रायणी में बहा दो, तो काफी कष्ट हुआ था क्योंकि जन कल्याण के लिए लिखा गया था उसको। तो बचा क्या, महाप्रभु जी के लेखन में से सब नदी में फेंकने के बाद बचा केवल ये 8 श्लोक जो उन्होंने कहे थे, जो किसी ने उतारे थे। और किस भाव से कहे हैं श्लोक, एक भक्त जो है वो भगवान को पुकार रहे हैं और वो भक्त शुरुआत की स्थिति में क्या बोल रहा है, आगे जब प्रगति करेगा तो क्या बोल रहा है और अंत में अंतिम चरम भक्ति के स्थान पर पहुंचेगा तो क्या बोल रहा है, ऐसे सारी अवस्थाओं का पूरा बिगिनिंग टू एंड वर्णन जो है वो ये 8 श्लोक में किया उन्होंने। अभी हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत सेकेंड लास्ट स्टेज का वर्णन कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट स्टेज का वर्णन क्या कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका विरह हो रहा है मुझे, मैं आपको मिस कर रहा हूं बहुत और आपके विरह में लगता है कि एक एक क्षण एक ही युग के समान है, समय बीतता ही नहीं है, लगता है कि समय इतना लंबा खींच रहा है। और आपके विरह में, आपकी याद में, आपकी स्मृति में मेरे आंखों से वर्षा की तरह अश्रु बह रहे हैं और मैं विश्व में हूं, विश्व भी है, लेकिन आपके ना होते हुए आपके विरह में मुझे लगता है कि सारा विश्व शून्य हो गया, पूरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, आपके बिना एवरीथिंग इज जीरो। तो समय अभी बीत चुका है, फिर भी मैं एक मिनट में कहना चाहूंगा इस बात को कि हम सब लोग यहां पर रो रहे हैं लेकिन हर एक के रोने के कारण अलग अलग हैं। भगवान भी इस बात को व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने स्वार्थ के हेतु रो रहे हैं कि हमारा पति गुजर गया या हमारा बच्चा गुजर गया, हमारा पैसा खो गया या हमारा जॉब चला गया। तो सब लोग तड़पते हैं दुनिया में, अपने अपने कर्मों के अनुसार हम लोग भोगते रहते हैं और सब लोग यहां पर तड़पते रहते हैं, कारण अलग 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 है उसके, लेकिन भगवान यहां पर इस श्लोक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि तड़पना ही है तो भगवान के लिए तड़पना चाहिए, आंसू बहाना ही है तो भगवान के लिए बहाना चाहिए, दुनिया की चीजों के लिए जो वैसे ही समाप्त होने वाली है समय के अनुसार, आप रो या मत रो, वो सब खोने वाला है, आपने जो भी कमाया रिश्ते नाते सब कुछ मृत्यु के समय सब समाप्त होने वाला है, तो जो निश्चित रूप से शाश्वत रूप में समाप्त होने वाला है उसके लिए आंसू मत बहाओ, उनको संभाल के रखो और उन आंसुओं को भगवान के लिए बहाओ, भगवान की याद में बहाओ, भगवान के प्रेम से बहाओ, भगवान के विरह में बहाओ, क्योंकि जब भगवान के लिए आंसू बहते हैं तो वो आंसू आत्मशुद्धि करते हैं, और दुनियादारी के लिए हम रोते हैं तो आंसू हमारा जो भी आध्यात्मिक उन्नति है उसको भी धो डालती है, पूरा उसको भी बहा देती है। दुनियादारी के लिए जो आंसू बहते हैं, इट इज सेड दैट व्हेन वी शेड टीयर्स फॉर वर्ल्डली थिंग्स दोज टीयर्स वॉश अवे ऑल द स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, सारी उन्नति जो हम करते हैं उसको बहा देती है पूरे। इसलिए संदेश एक ही है, अगर रोना ही है या रोने की स्थिति है तो केवल भगवान के लिए रोना, और इस दुनिया के किसी भी चीज खोने पर अपने मूल्यवान अश्रुओं को मत खोना, मत बहाना, उनको जिनके लिए बने हैं अश्रु वो उनके लिए बहाना, तब उसका अश्रुओं का उद्देश्य पर्पज पूरा हो जाएगा और वो बहने वाले अश्रु आपको भगवान के पास अधिक लेके जाएंगे। ये अश्रु दुनिया के लिए बहाते हैं तो भगवान से दूर लेके जाते हैं, दुनियादारी में और फंसा देते हैं, और वो भगवान के लिए बहाए वो अश्रु जो है वो भगवान के पास लेके जाते हैं और उसका प्रेम बढ़ता है भगवान से, और इसलिए वो कह रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को जब उच्चारण करते रहेंगे तो एक दिन उनके लिए आंसू निकल आएंगे। वो हमारे जीवन की परिपूर्णता है, जब उनके लिए आंसू बहेंगे तो हमारा अश्रु भी धन्य है और हमारा जीवन भी धन्य है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। आज आप सब लोग प्रार्थना में उपस्थित रहे, आप लोगों ने सबने प्रार्थना सुना, बहुत धन्यवाद है आपका, और आइए हम सब मिलकर प्रभुपाद जी को पुष्प अर्पण करते हैं। आज की नरसिंह देव की प्रार्थना आयुर्वेद डिपार्टमेंट के सदस्यों द्वारा संपन्न होगी, और मायापुर धाम जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार यानी प्रकट हुए थे, महाप्रभु जी वहां पर जन्मस्थान है उनका चैतन्य महाप्रभु का, वहां से आज महाप्रसाद आपको प्रार्थना के बाद में आया है।